एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो हम सब की जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ती है।
हाँ बिल्कुल, आजकल की टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई।
मेरा नाम है मेजबान एक का नाम।
और मैं हूँ मेजबान दो का नाम।
और आज हम बात कर रहे हैं जीना नेफ और डॉन नेफस की किताब सेल्फ ट्रैकिंग के बारे में।
सेल्फ ट्रैकिंग
मतलब ये फिटनेस बैंड, हेल्थ ऐप, स्लीप ट्रैकर, ये सब तो बहुत ही आम हो गए ना आजकल।
हाँ बहुत ज्यादा, कितने लोग रोज इस्तेमाल करते हैं।
सही का। और ये डिवाइस हमें अपने बारे में ढेर सारे नंबर, आंकड़े ये सब देते रहते हैं।
कितने कदम चले,
कितनी नींद ली,
हार्ट रेट क्या था, वगैरह वगैरह।
लेकिन सवाल ये उठता है कि इन नंबरों का, इन आंकड़ों का असल मतलब क्या है? क्या ये सच में हमें खुद को बेहतर जानने में मदद कर रहे हैं या सिर्फ नंबरों बाई खेल है? ये किताब इसी जरूरी सवाल को देखती है कि हम कैसे अपनी जिंदगी को डेटा में बदल रहे हैं
और इसके मायने क्या हैं, हमारे लिए, समाज के लिए, सबके लिए।
और ये जानना इसलिए भी जरूरी है मुझे लगता है क्योंकि ये सिर्फ गैजेट्स नहीं रह गए अब।
नहीं बिल्कुल नहीं,
ये धीरे धीरे हमारे शरीर को देखने का नजरिया, हमारी सेहत की समझ,
और शायद खुद को हम कैसे समझते हैं उस पूरे तरीके को बदल रहे हैं।
तो चलिए फिर इस किताब की दुनिया में गोता लगाते हैं, देखते हैं कि नेफ और नेफिस हमें क्या बताते हैं इस बारे में।
बिल्कुल, शुरू करते हैं।
अच्छा, तो इस किताब को और इसके नजरिए को समझने के लिए शायद लेखकों के बारे में थोड़ा जानना सही रहेगा।
हाँ ये दिलचस्प है। जीना नेफ और डॉन नेफिस दोनों काफी अनुभवी हैं, पर उनका फोकस थोड़ा अलग अलग है और यही चीज इस किताब को खास बनाती है।
तो जीना नेफ वो एक समाज शास्त्री हैं, ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हैं।
हाँ, उनका काम है टेक्नोलॉजी का समाज पर, संगठनों पर क्या असर पड़ रहा है उसको समझना।
मतलब वो बड़ी तस्वीर देखती हैं सिस्टम लेवल पर।
बिल्कुल, कैसे कंपनियां, हेल्थ केयर सिस्टम, समाज की सोच, ये सब मिलकर सेल्फ ट्रैकिंग को आकार देते हैं।
ठीक है। और दूसरी तरफ है डॉन नेफिस।
हाँ, डॉन नेफिस इंटेल लैब्स में एक वरिष्ठ शोध वैज्ञानिक और सांस्कृतिक मानव विज्ञानी है।
अच्छा, मानव विज्ञानी।
तो मानव विज्ञानी होने के नाते उनका ध्यान जमीनी हकीकत पर ज्यादा होता है, वो लोगों के बीच जाती हैं।
उनके अनुभव समझने पर।
हाँ, उनके अनुभव, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनके मूल्य, वो ये देखती हैं कि असल में लोग अपने ट्रैक किए गए डेटा से कैसे जूझते हैं,
उसका क्या मतलब निकालते हैं।
हाँ, और कैसे वो इस डेटा के इर्द गिर्द शायद कोई कम्युनिटी बनाते हैं या बातें करते हैं।
तो ये एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है, एक तरफ समाज का बड़ा ढांचा
और दूसरी तरफ इंसान का व्यक्तिगत अनुभव गहराई से।
और ये बात भी अहम है कि ये दोनों ना तो टेक्नोलॉजी के फैन हैं, ना ही उसके विरोधी।
नहीं बिल्कुल नहीं, ये गंभीर सामाजिक वैज्ञानिक है, इन्होंने इस ट्रेंड का सालों तक अध्ययन किया है।
तो ये किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि सेल्फ ट्रैकिंग क्या है,
बल्कि ये समझाने की कोशिश करती है कि इसका हमारे लिए, समाज के लिए क्या मतलब है, शायद भविष्य के लिए भी।
तो अगर इस किताब का सार बताना हो तो क्या कहेंगे?
कह सकते हैं कि ये किताब इस दौर के एक बहुत जरूरी चलन को समझने की कुंजी है।
कौन सा चलन?
ये जो वियरेबल टेक्नोलॉजी और डेटा आधारित वेलनेस का चलन है ना।
हाँ।
ये किताब उसकी मार्केटिंग की चमक दमक से परे जाती है।
और क्या दिखाती है?
वो उलझी हुई, जटिल और बहुत ही मानवीय सच्चाई जो अपने जीवन को नंबरों में बदलने के पीछे है।
मानवीय सच्चाई।
हाँ, और किताब का सबसे बड़ा तर्क, या कहें कि मुख्य विचार, ये है कि जो डेटा हम ट्रैक करते हैं, जिसे कंपनियां अक्सर हार्ड डेटा या एकदम पक्का तथ्य बताती हैं।
हाँ, लगता तो ऐसा ही है।
वो असल में वैसा है नहीं, लेखक उसे सॉफ्ट डेटा या नाजुक आंकड़े कहती हैं।
सॉफ्ट डेटा, इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है कि ये डेटा बहुत हद तक हमारे कॉन्टेक्स्ट पर, हमारे संदर्भ पर निर्भर करता है।
अच्छा।
ये अक्सर अधूरा होता है, अस्पष्ट होता है। और इसे वाकई काम की जानकारी में बदलने के लिए बहुत इंसानी सोच समझ, मतलब व्याख्या की जरूरत पड़ती है।
तो ये उस सोच को चुनौती देता है कि बस ज्यादा डेटा मतलब ज्यादा ज्ञान।
बिल्कुल, ये नैरेटिव बहुत चलता है टेक इंडस्ट्री में, पर ये किताब कहती है रुको, इतना सीधा नहीं है।
हाँ, सुनने में तो अच्छा लगता है कि ज्यादा डेटा मतलब ज्यादा ज्ञान, पर
असलियत ज्यादा जटिल है। किताब हमें डेटा की पूरी कहानी दिखाती है।
कैसे?
मतलब कैसे सेंसर शायद अधूरी जानकारी उठाते हैं, फिर कैसे हम उस जानकारी का मतलब निकालने की मुश्किल दिमागी मेहनत करते हैं।
हाँ, ये तो होता है।
फिर वो जानकारी समाज में कैसे शेयर होती है, उसे नए मतलब मिलते हैं।
और फिर?
और आखिर में कैसे बड़ी संस्थाएं जैसे मेडिकल सिस्टम या कंपनियां उसका इस्तेमाल या शायद गलत इस्तेमाल भी कर सकती हैं।
अच्छा, तो ये पूरा जीवन चक्र दिखाती है डेटा का।
हाँ।
और इसमें कई जरूरी पहलू आते हैं, जैसे ये क्वांटिफाइड सेल्फ मूवमेंट क्या था, ये डेटा की सॉफ्टनेस या नाजुकियत क्या चीज है,
राइट,
अपने डेटा को समझने में कितनी दिमागी और भावनात्मक मेहनत लगती है,
हाँ,
डेटा का सामाजिक जीवन कैसा है, जैसे दोस्तों से स्टेप काउंट शेयर करना, सेहत में सेल्फ ट्रैकिंग की क्या भूमिका है, क्या यह ताकत देता है या चिंता बढ़ाता है,
ये बड़ा सवाल है।
और फिर बड़े मुद्दे, प्राइवेसी, डेटा का मालिक कौन, एल्गोरिदम में कोई भेदभाव तो नहीं, नियंत्रण, ये सब
काफी कुछ है इसमें। और आखिर में किताब क्या कहती है?
आखिर में किताब एक तरह से ज्यादा डेटा लिटरेसी या डेटा साक्षरता की बात करती है, मतलब सिर्फ चार्ट पढ़ना नहीं।
नहीं, उससे कहीं ज्यादा, डेटा की सीमाएं समझना, वो कहां से आ रहा है उस पर सवाल उठाना।
और उससे अपनी जिंदगी के अनुभवों के साथ जोड़कर देखना।
बिल्कुल, एक आलोचनात्मक नजर जरूरी है। नंबरों को ही सब कुछ मान लेना ठीक नहीं।
ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। शुरू करते हैं वहीं से जहां से हम सब वाकिफ हैं।
कहां से?
ये वियरेबल्स हेल्थ एप्स जो वादा करते हैं कि हम खुद को बेहतर जान पाएंगे।
हाँ, ये वादे तो बड़े लुभावने होते हैं।
पर लेखक यहीं रुककर एक बुनियादी सवाल पूछते हैं, क्या ये डेटा वाकई उतना सीधा, साफ, ऑब्जेक्टिव है जितना हमें लगता है?
यहीं से किताब का असली विश्लेषण शुरू होता है,
टेक इंडस्ट्री का हार्ड डेटा वाला नजरिया एक तरफ
और हमारी जिंदगी की हकीकत वाला सॉफ्ट डेटा दूसरी तरफ।
और सवाल कि इतने सारे डेटा से हम सच में जानते क्या हैं?
इस चैलेंज की जड़ों को समझने के लिए किताब हमें क्वांटिफाइड सेल्फ या QS मूवमेंट के बारे में बताती है।
हाँ, इसका जिक्र पहले भी हुआ था, ये क्या था?
ये करीब 2007 में शुरू हुआ। टेक पत्रकार थे गैरी वुल्फ और केविन केली, उन्होंने इसे शुरू किया।
अच्छा,
ये लोग सिर्फ टेक के शौकीन नहीं थे, ये इस सोच के पायनियर थे कि नंबरों के जरिए आत्मज्ञान पाया जा सकता है।
नंबरों से आत्मज्ञान, दिलचस्प।
हाँ, उनकी शो एंड टेल मीटिंग्स होती थी।
उसमें क्या होता था?
लोग अपने पर्सनल डेटा प्रोजेक्ट्स शेयर करते थे, जैसे किसी ने अपनी नींद ट्रैक की, किसी ने मूड, किसी ने अपना खाना पीना।
अच्छा, तो लोग अपना डेटा दिखाते थे और बताते थे कि उन्होंने क्या सीखा।
बिल्कुल, और ये दिखाता है कि डेटा का मतलब निकालना शुरू से ही एक सामाजिक प्रक्रिया भी थी, अकेले का काम नहीं था।
लोग एक दूसरे से सीखते थे।
हाँ, अनुभव बांटते थे और सबके ट्रैकिंग करने के मकसद भी अलग थे।
जैसे
कोई शायद किसी बीमारी को मैनेज करने के लिए ट्रैक कर रहा था, कोई एथलीट अपनी परफॉर्मेंस सुधारना चाहता था,
या कोई सिर्फ जिज्ञासा के लिए।
हाँ बिल्कुल, कि देखें तो सही मेरे शरीर में क्या चल रहा है। तो ये शुरू से ही व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों था।
ठीक है, अब आते हैं उस मुख्य विचार पर, डेटा सॉफ्ट या नाजुक क्यों है? किताब क्या कारण बताती है?
कई कारण हैं। पहला, डेटा कलेक्शन में ही कमियां हो सकती हैं।
मतलब?
सेंसर गलत हो सकते हैं।
हाँ, सेंसर हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होते, कभी कभी गलत रीडिंग दे देते हैं।
और कई बार तो सिर्फ ये पता होना कि हमें ट्रैक किया जा रहा है
हमारा व्यवहार बदल देता है।
बिल्कुल। दूसरा कारण है संदर्भ का अभाव।
अकेले नंबर का कोई मतलब नहीं।
सही, जैसे मान लीजिए आपका स्लीप स्कोर 80 है, अब ये अच्छा है या बुरा?
पता नहीं।
ये तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप ये न देखें कि उस दिन क्या हुआ था, कोई स्ट्रेस था, देर से खाना खाया या सब ठीक था।
हाँ, संदर्भ के बिना नंबर अधूरा है।
और तीसरा, हमारा शरीर कोई मशीन नहीं है।
बिल्कुल नहीं।
ये लगातार बदलता है, जटिल है, अप्रत्याशित है, एक ही डेटा पॉइंट के कई मतलब हो सकते हैं।
जैसे दिल की धड़कन बढ़ना,
वो एक्सरसाइज से भी हो सकता है, चिंता से भी, या कॉफी पीने से भी।
तो डेटा सॉफ्ट है क्योंकि वो अधूरा है, संदर्भ पर निर्भर है और उसकी कई व्याख्याएं हो सकती हैं।
बिल्कुल, और इसी सॉफ्ट डेटा वाले आइडिया से जुड़ता है अगला पॉइंट।
क्या?
वो मेहनत जो इन कच्चे नंबरों को काम की जानकारी में बदलने में लगती है।
अच्छा, मतलब निकालने का काम, सेंस मेकिंग।
हाँ, सेंस मेकिंग, ये वो दिमागी, भावनात्मक और कभी कभी शारीरिक मेहनत है जिसे टेक कंपनियां अक्सर नजरअंदाज कर देती हैं।
वो तो बस डैशबोर्ड दिखा देती हैं, सुंदर ग्राफ।
हाँ, पर वो ग्राफ और चार्ट जवाब नहीं है, वो सुराग हैं, पहेलियां हैं जिन्हें हमें सुलझाना पड़ता है।
तो सेल्फ ट्रैकर एक तरह से जासूस बन जाते हैं अपने जीवन के,
कह सकते हैं। वो परिकल्पना बनाते हैं, छोटे छोटे प्रयोग करते हैं।
जैसे?
जैसे क्या रात को मेडिटेशन करने से मेरा स्लीप स्कोर सुधरता है, चलो एक हफ्ता करके देखते हैं।
पैटर्न ढूंढते हैं।
हाँ, और ये प्रक्रिया कई बार थकाने वाली हो सकती है, अस्पष्ट हो सकती है, हमेशा साफ जवाब नहीं मिलते।
इसके लिए तो एक अलग तरह की स्किल चाहिए।
बिल्कुल, थोड़ी आंकड़ों की समझ, थोड़ी अपने शरीर मन की गहरी जानकारी और अपने जीवन के संदर्भ की समझ।
यहीं पर वो गैप दिखता है। ऐप्स डेटा देते हैं
पर हमें असल में समझ चाहिए होती है।
ये वो अदृश्य मेहनत है जिसका जिक्र होता है, वो काम जो हम करते हैं पर गिना नहीं जाता।
हाँ, और जैसा QS मूवमेंट में देखा, ये मेहनत सिर्फ अकेले नहीं होती।
ट्रैकिंग बहुत सामाजिक भी है।
बहुत ज्यादा लोग अपना डेटा शेयर क्यों करते हैं?
सलाह लेने के लिए या दूसरों से जुड़ने के लिए।
हाँ, जो उन्हीं जैसी चुनौतियों से गुजर रहे हैं।
या खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए भी।
जवाबदेह रखने के लिए।
बिल्कुल।
स्ट्रावा या फिटबिट जैसे प्लेटफॉर्म्स वो इसी सामाजिक पहलू पर चलते हैं।
वहाँ कॉम्पिटिशन भी होता है, सपोर्ट भी।
हाँ, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है।
क्या?
सामाजिक दबाव, परफॉर्मेंस की चिंता और हमारे निजी अनुभव का एक तरह से चीज बन जाना जिसका व्यापार हो सके।
कमोडिफिकेशन।
हाँ, हमारा डेटा अब हमारे रिश्तों को, हमारी पहचान को भी बना रहा है।
ये बताने का एक नया तरीका बन गया है कि हम कितने स्वस्थ हैं, कितने अनुशासित हैं,
या कितने नैतिक भी।
अच्छा, अब बात करते हैं स्वास्थ्य और वेलनेस की।
यहाँ तो सेल्फ ट्रैकिंग सबसे ज्यादा है।
हाँ, सबसे आम यही है। और यहाँ लेखक एक संतुलित नजरिया पेश करते हैं।
मतलब?
एक तरफ मरीजों को ताकत देने की बहुत संभावना है।
कैसे?
जो लोग पुरानी बीमारियों से जूझ रहे हैं जैसे डायबिटीज या हार्ट प्रॉब्लम, वो अपनी कंडीशन को बेहतर समझ सकते हैं, ट्रिगर्स पहचान सकते हैं,
डॉक्टरों से बेहतर बात कर सकते हैं।
बिल्कुल। डॉक्टर को भी दो विजिट के बीच क्या हुआ इसका अंदाजा लग सकता है।
मरीज की भूमिका ज्यादा सक्रिय हो सकती है।
ये तो अच्छा पहलू है। लेकिन दूसरी तरफ
खतरे भी हैं। पहला, जिसे वो कहती हैं डेटा संचालित चिंता,
मतलब नंबरों को लेकर परेशान होना।
हाँ, जरा सा उतार चढ़ाव हुआ और टेंशन शुरू।
ये तो होता है कई लोगों के साथ।
दूसरा, जीवन का मेडिकलाइजेशन, मतलब रोजमर्रा की चीजें जैसे खाना, सोना, वो भी मेडिकल प्रॉब्लम बन जाती हैं, जिन्हें लगातार ऑप्टिमाइज करना है। तीसरा, मरीज के सॉफ्ट डेटा और मेडिकल सिस्टम के हार्ड स्टैंडर्ड डेटा के बीच टकराव हो सकता है।
डॉक्टर शायद ऐप के डेटा पर भरोसा ना करें।
हाँ, या उसे अपने सिस्टम में फिट ना कर पाएं। और एक बड़ा खतरा ये भी है कि सेहत की जिम्मेदारी धीरे धीरे सिस्टम से हटकर व्यक्ति पर आ रही है।
मतलब अगर आपका डेटा सही नहीं तो ये आपकी गलती है।
कुछ ऐसा ही।
और किताब सिर्फ व्यक्तिगत अनुभवों तक नहीं रुकती।
नहीं, ये बड़े मुद्दों पर भी बात करती है। प्राइवेसी, हमारे डेटा का क्या होता है,
मालिक कौन है उसका।
हाँ, क्या एल्गोरिदम में कोई भेदभाव है, क्या वो सबके लिए सही काम करते हैं,
और क्या हमारे डेटा का इस्तेमाल हमारी जानकारी के बिना हो सकता है,
व्यावसायिक लाभ के लिए या सामाजिक नियंत्रण के लिए, जिसे कुछ लोग सर्वेलेंस कैपिटलिज्म कहते हैं,
निगरानी वाला पूंजीवाद।
ये सवाल काम की जगह तक भी जाते हैं, वर्कप्लेस वेलनेस प्रोग्राम्स।
हाँ, आजकल बहुत हैं।
वहाँ ट्रैकिंग डिवाइस दिए जाते हैं, तो सवाल उठता है ये स्वैच्छिक है या इसमें दबाव है।
क्या ये सच में हमारी भलाई के लिए है या निगरानी का एक तरीका,
और क्या सबको इसका बराबर फायदा मिल रहा है? आय, शिक्षा, तकनीक तक पहुँच, ये सब फर्क डालते हैं।
सही बात है। तो चलिए, इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बातें निकली, जो थीम्स हैं, उन्हें एक बार फिर से दोहराते हैं।
हाँ, बिल्कुल। पहली और शायद सबसे जरूरी बात, डेटा पत्थर की लकीर नहीं है, ये सॉफ्ट है, नाजुक है और संदर्भ पर निर्भर करता है।
बिना संदर्भ के डेटा अधूरा है। जैसे 10,000 कदम पर कहाँ चले, सपाट जमीन पर या पहाड़ पर।
हाँ,
या भारत में सोचे मुंबई की लोकल ट्रेन की भीड़ में चले गए।
कदमों का मतलब ऑफिस में आराम से टहलने वाले के कदमों से कितना अलग होगा।
बिल्कुल। दूसरी अहम बात, मतलब निकालना ही सेल्फ ट्रैकिंग का असली काम है। डेटा इकट्ठा करना आसान है,
डिवाइस कर देता है,
पर उसका मतलब क्या है ये समझना मुश्किल और जरूरी मेहनत है।
जैसे स्लीप स्कोर मिला पर वो कम क्यों है, ये पता लगाना असली काम है।
हाँ, अपनी जिंदगी की पहेली सुलझाने जैसा।
तीसरी थीम, सेल्फ ट्रैकिंग अकेले का नहीं, समाधिक काम है।
हम शेयर करते हैं, जुड़ते हैं, मुकाबला करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं।
व्हाट्सएप ग्रुप पर दोस्तों के साथ स्टेप्स शेयर करना, ये सिर्फ नंबर नहीं, ये कनेक्शन है।
हाँ, पहचान का हिस्सा बन रहा है।
चौथी थीम है वो द्वंद, ताकत बनाम चिंता और नियंत्रण।
ये दो धारी तलवार है, मरीजों के लिए मददगार हो सकती है,
लेकिन स्वस्थ लोगों में चिंता बढ़ा सकती है, चिंतित स्वस्थ।
और बाहरी नियंत्रण का खतरा, कंपनियां, बीमा कंपनियां जैसे डायबिटीज ऐप फायदेमंद, पर स्लीप ट्रैकर को तनाव लेना नुकसान दे, वर्कप्लेस वेलनेस प्रोग्राम पर भी सवाल।
हाँ, फायदा या निगरानी।
और पांचवी थीम,
हमें आलोचनात्मक डेटा साक्षरता की सख्त जरूरत है।
सिर्फ डेटा पढ़ना नहीं, उसकी सीमाएं समझना,
सवाल उठाना, कहां से आया, कैसे इकट्ठा हुआ, और नंबरों को ही अंतिम सच नहीं मानना।
जैसे हम खबरों के स्रोत पर सवाल उठाते हैं, वैसे ही डिवाइस के डेटा पर भी उठाना चाहिए।
बिल्कुल।
किताब में कुछ विचार या कथन ऐसे हैं जो याद रह जाते हैं।
हाँ, जो सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे पहला, सॉफ्ट डेटा पर, सेल्फ ट्रैकिंग डेटा आईना नहीं है जो सच्ची तस्वीर दिखाए, बल्कि ये एक चित्र है
जिसे बनाने वाले के औजार, सेंसर और नजरिए, व्याख्या, संदर्भ ने मिलकर गढ़ा है।
क्या बात है, मतलब डेटा हकीकत नहीं, हकीकत का एक वर्जन है
जिसमें तकनीक और इंसान दोनों शामिल हैं। ये डेटा की सीमाओं पर जोर देता है।
दूसरा विचार मतलब निकालने के काम पर है। असली काम वहां शुरू होता है जहां डैशबोर्ड खत्म होता है।
हाँ, असली चुनौती डेटा इकट्ठा करना नहीं बल्कि स्क्रीन के नंबरों और जिंदगी की कहानी के बीच के तार जोड़ना है।
ये बिल्कुल सही लगता है। ऐप नंबर देता है पर कहानी हमें बनानी पड़ती है।
तीसरा विचार सामाजिक पहलू पर। हम सिर्फ अपने लिए ट्रैक नहीं करते, हम दूसरों के लिए भी करते हैं।
हमारा डेटा ये बताने का एक नया तरीका बन गया है कि हम कौन हैं।
अपना समूह ढूंढने का जरिया बन गया है और अपने जीवन को दूसरों के सामने मापने का पैमाना बन गया है।
ये तोड़ता है उस सोच को कि ट्रैकिंग निजी मामला है। ये दिखाता है कि डेटा अब सामाजिक प्रदर्शन बन गया है।
और चौथा विचार उस दोहरेपन पर।
हाँ, वो बहुत अच्छा है।
हर उस मरीज की कहानी के साथ जो अपने डेटा से ताकत पाकर डॉक्टर को चुनौती देता है,
एक स्वस्थ इंसान की कहानी भी जुड़ी है जो एक सामान्य रात की नींद को बीमारी बताने वाले डिवाइस से चिंतित हो जाता है।
ये बिल्कुल सटीक है, ताकत भी और चिंता का जोखिम भी।
ये किताब के संतुलित नजरिए को दिखाता है, सिर्फ फायदे लिए नुकसान भी बताती है।
तो अब सवाल यह है कि इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब निकालें?
हाँ, हम इन विचारों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
किताब कोई सीधी हाउ टू गाइड तो नहीं है, पर कुछ इशारे मिलते हैं।
जैसे,
पहला, अपने डेटा के जागरूक उपभोक्ता बने, नंबरों पर आंख बंद करके भरोसा ना करें।
उन्हें सुराग समझे, फैसला नहीं, पूछे क्यों।
हाँ, और नंबरों वाले डेटा को अपनी भावनाओं, अनुभवों, उस दिन की घटनाओं के साथ मिलाकर देखें, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव।
ठीक है, दूसरा सुझाव,
रोज के छोटे मोटे उतार चढ़ाव पर मत अटकें, लंबे समय के ट्रेंड्स देखें।
एक रात की खराब नींद या कम स्टेप से परेशान न हो, हफ्तों या महीनों के पैटर्न देखें।
इससे चिंता कम होगी और शायद ज्यादा सार्थक जानकारी मिलेगी।
तीसरा सुझाव, डेटा का इस्तेमाल सीखने के लिए करें, खुद को जज करने के लिए नहीं।
इसे पास फेल टेस्ट न समझें, इसे खुद को जानने का एक प्रयोग माने।
डेटा से बेहतर सवाल पूछें, जैसे मेरे अचारवी काम के दिनों में कम क्यों रहता है, क्या बदल सकता हूँ।
हाँ, इससे ध्यान समाधान पर जाता है।
और चौथा, शायद सबसे जरूरी,
अपने शरीर और मन की सुने, अपने अनुभव पर भरोसा करें।
अगर डिवाइस कहे कि बढ़िया सोए पर आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं,
तो अपनी भावना पर यकीन करें, हो सकता है एल्गोरिथम आपके लिए सही ना हो।
डेटा कई इनपुट्स में से सिर्फ एक है, आपका अनुभव भी बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, और संक्षेप में ये बातें सिर्फ हमारे लिए नहीं है,
डॉक्टरों के लिए भी।
हाँ, जो मरीजों के डेटा को बातचीत का हिस्सा बना सकते हैं।
टेक डिजाइनरों के लिए भी, जो ऐसे टूल बनाएं जो मतलब निकालने में मदद करें।
और नीति बनाने वालों के लिए भी, प्राइवेसी, बराबरी, नैतिकता पर सोचने के लिए।
हमें ऐसे सिस्टम चाहिए जो इंसानी समझ और व्याख्या को भी महत्व दें, सिर्फ डेटा कलेक्शन को नहीं। तो अगर इस पूरी बातचीत से एक सबसे बड़ी सीख लेनी हो तो मेरे लिए वो ये है कि व्यक्तिगत डेटा कोई अंतिम जवाब नहीं है,
बल्कि
ये एक सवाल पूछने का जरिया है, खुद से बातचीत शुरू करने का एक तरीका।
हाँ, अपने शरीर से, अपनी आदतों से।
ये कोई फाइनल फैसला नहीं है, हमें स्क्रीन पर चमकते नंबरों को थोड़ी शंका, जिज्ञासा और संदर्भ की समझ के साथ देखना चाहिए।
डेटा के नाजुकियत को मानना जरूरी है।
हाँ, तभी उसका सही इस्तेमाल होगा। आपके लिए सबसे अहम बात क्या रही?
मेरे लिए जो बात सबसे अहम रही वो ये एहसास था कि असली मतलब निकालने वाली मैं खुद हूँ।
अच्छा,
मेरा दिमाग, मेरी समझ, मेरा अनुभव, ये कलाई पर बंधे सेंसर से कहीं ज्यादा जरूरी है।
डेटा सिर्फ एक टूल है।
हाँ, उसे कैसे इस्तेमाल करना है ये मेरे हाथ में होना चाहिए, और ये सवाल पूछना भी जरूरी है कि मेरे इस डेटा से आखिर फायदा किसे हो रहा है। सिर्फ मुझे या उन कंपनियों को भी जो डिवाइस बेच रही हैं और डेटा इकट्ठा कर रही हैं।
बिल्कुल, चलिए इस बातचीत को एक अंतिम विचार के साथ खत्म करते हैं सोचने के लिए।
क्या?
अगर हमारा डेटा हमारी कहानी का एक हिस्सा बनता जा रहा है, तो क्या हम उस कहानी के लेखक बने रह पाएंगे, या कहीं धीरे धीरे हमारे डिवाइस और एल्गोरिथम ही हमारी कहानी लिखने लगेंगे।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।